नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय क्रमांक 21। इस अध्याय का शीर्षक है गोपियों के द्वारा गोवर्धन का गुणगान। श्लोक क्रमांक 18। हंताय मद्रिरबला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः मानं तनोति सह गो गणयोस्तयोर्य पानीय सूयव सकंदर कंदमूलैः हंताय मद्रिरबला हरिदासवर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः मानं तनोति सह गो गणयोस्तयोर्य पानीय सूयव सकंदर कंदमूलै हंताय मद्रिरबला हरिदासवर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः मानं तनोति सह गो गणयोस्तयोर्य पानीय सूयव सकंदर कंदमूलै अहंत ओ अयम यह अद्रि पर्वत अबला हे सखियों हरिदास वर्य भगवान के सेवकों में से सर्वश्रेष्ठ यत क्योंकि राम कृष्ण चरण कृष्ण तथा बलराम के चरण कमलों के स्पर्श स्पर्श से प्रमोद हर्षित मानम आदर तनोति प्रदान करता है सह साथ गोगणयो गौवे बछड़े तथा ग्वालबाल के तयो उन दोनों श्री कृष्ण तथा बलराम को यत क्योंकि पानी पेय जल के साथ सुयवस अत्यंत मुलायम घास कंदर गुफाएं कंद मूले तथा खाद्य कंदों से अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा यह गोवर्धन पर्वत समस्त भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है सखियों यह पर्वत कृष्ण तथा बलराम के साथ ही साथ उनकी गौवों बछड़ों तथा ग्वाल बालों की सभी प्रकार की आवश्यकताओं पीने का पानी अति मुलायम घास गुफाएं फल फूल तथा तरकारियों की पूर्ति करता है इस तरह यह पर्वत भगवान का आदर करता है कृष्ण तथा बलराम के चरण कमलों का स्पर्श पाकर गोवर्धन पर्वत अत्यंत हर्षित प्रतीत होता है तात्पर्य उपर्युक्त उद्धरण श्रील प्रभुपाद कृत चैतन्य चरितामृत मध्य लीला से लिया गया है श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गोवर्धन पर्वत के ऐश्वर्य की विवेचना इस प्रकार की है पानीय गोवर्धन पर्वत के झरनों से प्राप्त सुगंधित शीतल जल का द्योतक है जिसे कृष्ण तथा बलराम पिया करते थे और जिससे अपने पांव और मुख धोया करते थे गोवर्धन पर्वत शहद आम का रस तथा पीलू का रस जैसे अन्य पेय भी प्रदान करता है सूर्यवस दुर्वा अर्थात दूब घास को बतलाता है जिससे अर्घ की धार्मिक भेंट दी जाती है गोवर्धन पर्वत में घास भी होती है जो सुगंधित मुलायम तथा गौओं की वृद्धि एवं उनमें दूध बढ़ाने के लिए लाभप्रद है इस तरह यह घास आध्यात्मिक पशुओं को खिलाने के काम आती है कंदर गुफाओं का सूचक है जहां कृष्ण बलराम तथा उनके संगी खेलते बैठते और लेटते थे ये गुफाएं तब आनंद देती है जब या तो बहुत गर्मी हो या सर्दी हो या फिर वर्षा हो रही हो गोवर्धन पर्वत में खाने के मुलायम कंद शरीर सजाने के रत्न बैठने के लिए समतल स्थान तथा चिकने पत्थर चमकीले जल और अन्य प्राकृतिक वस्तुओं के रूप में दर्पण तथा दीपक प्रदान करते हैं ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्री गुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपां साग्रजातां सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधुर जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के रविवार के श्रीमद् भागवतम क्लास में। सभी भक्तों से निवेदन है, अपने मोबाइल फोन आप साइलेंट पर कर दीजिए इस समय,
और FM 108 भी चालू है, तो जो भी माताओं को बाहर बैठना है या जो भी बाहर भक्त सेवा कर रहे हैं वो FM 108 पे सुन सकते हैं।
गोवर्धन पर्वत जो हमें लौल्यम का महत्व सिखा रहे हैं, तात्पर्य में हम हर रविवार पढ़ रहे हैं कि विभिन्न तरीके से वो भगवान की सेवा में लगे हैं। अपने झरनों के द्वारा समतल स्थान, घास, वृक्ष, ये सब मिलाकर हैं परिचय गोवर्धन पर्वत का। इससे ये समझ में आता है कि एक भक्त जो है वो भगवान की सेवा हर प्रकार से करना चाहता है। अ डिवोटी इज मल्टी फेसेटेड डायमंड, हीरा जो होता है ना, सब तरफ से चमकता है, या गुलाब जामुन सब जगह से मीठा। अगर गुलाब जामुन एक तरफ से केवल मीठा है तो वो संपूर्ण नहीं है। संपूर्णता का अर्थ है कि वो भगवान की सेवा हर प्रकार से करने का इच्छुक। ये अलग बात है कि उसके अंदर वो कला ना हो या वो काबिलियत न हो, परंतु यदि उसके अंदर वो तीव्रता है, जैसे गोवर्धन के अंदर ये लौल्यम उत्साह भगवान की सेवा हर प्रकार से करने का, तो फिर काबिलियत भगवान देते हैं या गुरु देते हैं। तो पिछली दफा हमने हमारे ये जो कमिटमेंट और एक्सेप्टेंस का मुद्दा चल रहा है, तो हमने ये कार टेक्निक, चेंज द चेंजेबल, एक्सेप्ट द अनचेंजेबल, रिमूव द अनएक्सेप्टेबल, तो हमने दो उदाहरण लिए थे, अर्जुन और प्रभु श्री राम, पोजिशन वर्सेस डिस्पोजिशन, कंडीशन वर्सेस कॉन्शियसनेस। तो जब हम इतनी बारीकी से कृष्ण भक्ति जानने का प्रयास कर रहे हैं, करना चाहते हैं आप लोग बारीकी से? केवल श्रील प्रभुपाद जैसे गुरुजन वो कृष्ण भक्ति का निरूपण इतनी बारीकी से दिए हैं, अन्यथा बचपन से हम कृष्ण भक्ति के बहुत से भजन गाते बड़े हुए होंगे। भगवान दर्शन दे दो, भगवान दर्शन दे दो, विचार बहुत अच्छा है, वो जो एक भाव है वो भी बहुत अच्छा है, परंतु सिद्धांत सब्सटेंस उसके अंदर, वो जब हम श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़ते हैं या श्रील प्रभुपाद ने जो यथारूप उस सब्सटेंस को अपने पुस्तकों में प्रवचनों में दिया, अपने उदाहरण से प्रस्तुत किया, तब समझ में आता है कि ये जो भक्ति का मार्ग है ये कितना गहरा है, कितना व्यवहारिक है और कितना असरदार है। हाउ डीप, हाउ प्रैक्टिकल एंड हाउ इफेक्टिव, ये तीन चीजें होना बहुत महत्वपूर्ण है, तब जाकर हमें अनुभव होता है। Then we get to experience Krishna. When we go deep, when it is practically applicable and when it is effective. तो आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न को लेंगे। How to be full of Krishna? हम लोग साधना भक्ति में हमारे जीवन का घड़ा लेकर आते हैं और देखते हैं कि बहुत वर्ष बीतने के पश्चात भी घड़ा जो है वो थोड़ा बहुत भरा है। कई बार तो ऐसा लगता है कि इनिशियल हमारे जो वर्षों में घड़ा बहुत जल्दी जल्दी भर रहा था, फिर धीरे धीरे उसके अंदर वो जो कृष्ण भक्ति का जो कंटेंट है वो कंटेंट स्टैग्नेंट हो गया, स्थाई, और फिर धीरे धीरे कम होते गया। कुछ वर्षों बाद ये भी देखने को मिला कई भक्तों के जीवन में कि वो कम होते गया, तो कभी थोड़ा बढ़ता है कभी कम होता है, परंतु हम में से कोई ये नहीं कह सकता कि मेरा घड़ा भर गया, मैं भरा हुआ हूं कृष्ण से, है कोई दावे के साथ? मैं तो नहीं कह सकता कि मेरा घड़ा कृष्ण भक्ति से भर गया। कई बार ऐसा है कि नीचे से छेद बहुत सारे हैं, ऊपर से फ्लो बहुत है, नीचे से बहते जा रहा है, बहते जा रहा है, घड़े के नीचे से बहते जा रहा है। तो क्या आप आज हमारे सुबह के सत्र में जानना चाहेंगे कि कैसे हम अपने घड़े को पूरा कृष्ण से भरें? थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाया जागने, आप लोग जग जाए। कई लोग सुबह 5 बजे से हैं इसलिए इनर्शिया आ जाता है। तो ये थीम मेरे दिमाग में, ये प्रश्न आया या ये थीम मैं आज लेने की सोचा कि मैंने एक श्रील प्रभुपाद का पास टाइम पढ़ा जिसके अंदर श्रील प्रभुपाद इसके विषय में वो संकेत करते हैं। तो त्रिपुरारी महाराज श्रील प्रभुपाद के पास आए बुक डिस्ट्रीब्यूशन स्कोर्स लेकर, बहुत अच्छे उनके मैराथन में बुक डिस्ट्रीब्यूशन स्कोर्स हुए, तो प्रभुपाद को सुनाने के लिए वो आए कि इतने भगवत गीता हमने बांटी, श्रीमद् भागवतम सेट्स, स्मॉल बुक्स वगैरह। तो श्रील प्रभुपाद सुन रहे थे और उसके बाद श्रील प्रभुपाद ने कहा, डू यू नो व्हाट इज द गोल ऑफ अवर कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट। जैसे ही प्रभुपाद इस प्रकार का प्रश्न पूछते अपने डिसाइपल से, तो वो बहुत अलर्ट हो जाते कि कुछ ऐसा सूत्र प्रभुपाद अभी देने वाले हैं कि जो 10,000 साल तक सारे मनुष्य समाज पर लागू होगा। श्रील प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त, उनके मुख से जब ऐसे सूत्र निकलते हैं तो वो सैकड़ों सालों तक मनुष्य समाज के लिए एक नियम बन जाता है, एक पॉलिसी, वेद वाक्य हो जाता है वो। तो प्रभुपाद ने पूछा, डू यू नो व्हाट इज द गोल ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट? नो प्रभुपाद, यू टेल। तो प्रभुपाद ने कहा, द गोल ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट, व्हेन पीपल कम टू आवर टेंपल, देयर हैंड्स शुड बी फुल विथ आर बुक्स, देयर स्टमक शुड बी फुल विथ कृष्ण प्रसाद, देयर माइंड शुड बी फुल विथ कृष्ण स्मरण, एंड देयर पॉकेट शुड बी एम्प्टी। तो मैं इसके विषय में सोच रहा था कि प्रभुपाद ने जो कहा कि बाकी सब फुल पॉकेट एम्प्टी, उल्टा होता है ना, लोग मंदिरों में क्यों जाते हैं? हम लोग पहले मंदिर में क्यों जाया करते थे? उल्टा सिद्धांत था ना हमारा कि जेब भरती रहे, बटुआ भरता रहे, बैंक बैलेंस भरता रहे। यहां पर प्रभुपाद ने कहा बाकी सब उसके अलावा भरता रहे, वो सब उसको खाली करना है। Why pockets should be empty? Because that is where everyone's heart is nowadays. कहां पर कलेजा अटका हुआ है हम सबका? न बाप न भैया, सबसे बड़ा रुपया। कोई नहीं पूछता है, बाप को भी नहीं, भैया को भी नहीं। जब रुपया आ जाता है तो बाप भैया सब साइड में। तो प्रभुपाद ने क्या कहा कि वो जहां पर हमारा कलेजा अटका हुआ है, वहां से उस कलेजे को छुटकारा दिलाना है। हैंड्स फुल विथ कृष्ण बुक्स या कृष्ण कथा, स्टमक्स फुल विथ कृष्ण प्रसाद, माइंड्स फुल विथ कृष्ण स्मरण। फुल, ये जो प्रभुपाद बार बार फुल फुल फुल, तो मैंने सोचा है बहुत सुंदर प्रभुपाद ने एक संकेत दिया है डिस्कशन के लिए, हाउ टू बी फुल ऑफ कृष्णा। आर यू रेडी? तो 10 पॉइंट्स हैं, दिल थाम के बैठिए और हर एक पॉइंट के एंड में फुल है। बिगिनिंग विथ होपफुल, पेनफुल, फेथफुल, माइंडफुल, केयरफुल, हेल्पफुल, ग्रेटफुल, जॉयफुल, मीनिंगफुल एंड then Krishna consciousness becomes simply wonderful. तो आपको लग रहा होगा लेक्चर खत्म, नहीं, अभी हम बारीकी, क्या कहा था हमने, प्रभुपाद ने हमें क्या सिखाया है, बारीकी से कृष्ण कॉन्शियसनेस को समझना है, अपने जीवन में उतारना। तो सबसे पहले होपफुल, हम लोग कृष्ण भक्ति में आए हैं या इस भौतिक संसार में हम जहां कहीं पर भी जाते हैं, जो कुछ भी हम करते हैं, आशा बहुत, ये एक की वर्ड है हम मनुष्यों के लिए, हमारे जीवन यापन के लिए ये एक बहुत की वर्ड है, आशा, होप, आकांक्षा इत्यादि। अब देखिए श्रीमद् भागवत में उदाहरण है पिंगला, एक वैश्या थी ये, और वैश्या वृत्ति का जो जीवन जी रही थी वो, तो वो किस आशा में, एक वैश्या किस आशा में वो अपना धंधा करती है, कि कोई ऐसा पुरुष आएगा जो उसे समृद्ध कर दे, तो इसी आशा में ये पिंगला नामक वैश्या एक शाम को प्रतीक्षा में थी। पुरुष गुजर रहे थे उसके सामने से, एक भी पुरुष उस शाम पिंगला को समृद्ध करने नहीं आया। आशा पिंगला की हरेक पुरुष के प्रति थी, जैसे एक एक पुरुष गुजरता पिंगला आशा भरी नजरों से उस पुरुष की ओर देखती कि शायद ये इंटरेस्टेड होगा मुझ में, वो भी नहीं, ठीक है दूसरा, तीसरा, चौथा, कोई नहीं, तो उसकी आशा निराशा में परिणित हुई और फिर उसे साक्षात्कार हुआ। अचानक उसे साक्षात्कार हुआ अपने स्वयं की दयनीय स्थिति का और भगवान की कृपा का, तो उसे यह साक्षात्कार हुआ कि भगवान ने कृपा कर कर मुझे क्या भेजा। भगवान की आज के दिन, पिंगला कहती है कि भगवान के आज के दिन जो असीम कृपा प्राप्त हुई है उसका मैं मूल्यांकन नहीं कर सकती, वो कहती है। और वो कौन सी असीम कृपा, निराशा। आप लोग समझ रहे होंगे, सोच रहे होंगे, इसे आप कृपा बोलते हो? कल्पना करो, आशा से भरे हम भगवान श्री कृष्ण के समक्ष जाएं और भगवान से याचना करें, भगवान कृपा कृपा, और भगवान कृपा दे रहे हैं निराशा। क्या समझेगा कोई व्यक्ति, ये कृपा है या दंड है? तो पिंगला के लिए, उस वैश्या के लिए निराशा वो थी भगवान की कृपा। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, वो कहती हैं। इस संसार में जब भी हम दुखी होना चाहते हैं, यदि कोई इस इच्छा में है कि चलो बहुत सुखी हो लिया, थोड़ा दुखी हो लो, तो आशा, आशा बांध कर रखे इस भौतिक संसार के लोगों के साथ, हमारे स्वयं का जो भौतिक शरीर है और जो भी उस स्तर पर है उससे आशा, क्योंकि ये संसार बनाया इस प्रकार से गया है कि माया देवी हमें तुरंत निराशा नहीं देती है। जैसे कोई जुआरी को एक जुए का अड्डा कैसे फांसता है, पहले जिताता है, एक बार दो बार, वो कसीनो या वो जुए का अड्डा जो है उस जुआरी को जिताएगा, तो जब वो जीतता है तो क्या होता है, आशा, उसकी आशा बढ़ने लगती है कि हाँ मैं जीत रहा हूं, आगे भी जीतूंगा, अभी मैं इतना जीता और खेलूंगा उसका डबल, और लगाऊंगा ट्रिपल, है कि नहीं। तो हो सकता है हम कहें कि भाई हम तो, मैं कभी जुए के अड्डे में गया नहीं है, मैं, मेरे लिए नहीं है वो उदाहरण, काश वो होता आज लेक्चर में। परंतु जब हम इस भौतिक संसार में इस नियम का पालन करते हैं कि मैंने इतना परिश्रम दिया और उसके बदले में मुझे इतना मिलेगा, हम जुआरी हो गए। FM 98.3 क्या है, मिर्ची, रेडियो मिर्ची के ऊपर रेडियो जॉकी होता है ना, वो गीत के बीच में वो बोलता रहता है कि फोन कॉल्स लेता है, जो लोग वो लोग अपने चॉइसेस बताते हैं गीत के कि मेरा ये चॉइस है, तो गीत के बीच में फोन कॉल लेता है। तो रेडियो जॉकी ने दो गीतों के बीच में एक फोन कॉल लिया, तो फोन कॉल आया, बोलिए बोलिए साहब, क्या कहना चाहेंगे आप। उसने कहा कि मुझे यहां गंगापुर रोड पर एक पर्स मिला है और उस पर्स में 150,000 रुपए हैं नकद, और क्रेडिट कार्ड है, और पल्लवी मिश्रा का ड्राइविंग लाइसेंस है। तो रेडियो जॉकी कहता है कि आप इतने ईमानदार, कलयुग में बहुत कम आप जैसे ईमानदार मिलते हैं, तो आप, मैं आपका समाचार पल्लवी मिश्रा को देना चाहता हूं, आप बताइए आप कहाँ कैसे ये लौटाएंगे पर्स उनको। नहीं 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 नहीं, मैं फोन इसलिए किया कि पल्लवी मिश्रा के नाम पर एक दर्द भरा गीत हो जाए। तो ये भौतिक संसार कि हमें लगता है कि हमें आशा, पहले आशा, माया देवी आशा सामने प्रस्तुत करती है, फिर प्रस्तुत करते 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 अपने आंखों के सामने वो छीन लेती है, चाहे वो हमारा रूप हो, चाहे वो धन हो, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो हमारा यश हो, जो कुछ हो, दिखा दिखा कर छीनती है ना, उसमें ज्यादा चिढ़ आता ना, दिखा दिखा कर छीन लेना। जैसे कई बार कई होते ना, जानवरों को या कुत्तों को कुछ दिखा कर नहीं खिलाते, तो कुत्ता जो है वो धीरे 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 इरिटेट होने लगता है। तो इस भौतिक संसार के प्रति होप निरर्थक है, कोई इसके अंदर तथ्य नहीं है। परंतु जब हम भक्ति में आते हैं तो भक्ति में हम किसी आशा से आए हैं, है कि नहीं। बिना आशा के हम जी नहीं पाएंगे, हमारे स्वरूप के अनुसार हमारे अंदर होप्स। तो सबसे पहला जो सिद्धांत है, टू बी फुल ऑफ कृष्णा, वी हैव टू बी होपफुल एंड टू बी होपफुल ऑफ कृष्णा, द फर्स्ट प्रिंसिपल इज कृष्णाज प्रॉमिस, भगवान द्वारा दिया गया आश्वासन। भगवान ने अपने श्रीमुख से आश्वासन दिए, इतने सारे, एक नहीं कितने आश्वासन दिए हैं, कौन्ते प्रतिजानी ही नमे भक्त प्रणश्यति सर्वधर्मान परित्यज्य मा शुचः इत्यादि कितने सारे आश्वासन भगवान दे चुके हैं। तो जब मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि हम जब भगवान द्वारा दिए गए इन आश्वासनों को समझते हैं तो क्या हम हमारी भक्ति की जो नाव है उस आशा पर भव सागर से पार कर जाएंगे उस नाव के द्वारा? मेरा ये प्रश्न है, इज दैट इनफ? कृष्णाज प्रॉमिस, भगवान द्वारा आश्वासन है तो उसमें कुछ डाउट होना चाहिए क्या? नहीं। तो क्या यहां पर उपस्थित सभी भक्तों की सारी आशाएं पूरी हो चुकी? क्योंकि भगवान ने तो 5000 साल पहले दे दिया था आश्वासन। ऑल योर होप्स, यू आर कंप्लीटली होपफुल और योर होप्स आर फुल? दूसरा मुद्दा, टेस्ट इन भक्ति। देखो, भगवान का आश्वासन और उसके साथ साथ जब हम भगवान की भक्ति को टेस्ट करते हैं, चखते हैं, और चखने के बाद जो भगवान का आश्वासन है उससे हम रिलेट कर पाते हैं, क्या होता है कि भगवान का आश्वासन तो बहुतों को, सबके लिए, परंतु केवल शरणागत भक्त कुछ ही क्यों होते हैं? क्योंकि वो उस भगवान के आश्वासन को चखते हैं। तो जो बहुत ऊंचे स्तर पर हैं, भगवान यदि उनके जीवन से कृष्ण भक्ति का टेस्ट निकाल भी लें तो भी उनका होप्स भगवान से कम नहीं होने वाला है, क्योंकि वो उस लेवल को पार कर चुके हैं। कौन से लेवल को? डाउट, डाउटिंग लेवल को पार कर चुके हैं। हम लोग बीच में अटके हुए हैं, है ना? कई बार, बहुत बार डाउट्स आते हैं कि सही में कुछ होगा कि नहीं मेरा, या सही में भगवान मेरे ओर नजर रखे हैं कि नहीं। तो हम लोग वो जो डाउट की लाइन पे अटके हुए हैं, इसलिए हमारे लिए भगवान का आश्वासन उतना ही जरूरी है जितना कि हम टेस्ट भक्ति का करें। और अक्सर शुरुआत किसी भक्त के पतन की कब होती है? एक स्ट्रगलिंग साधक का जो फॉल डाउन है उसकी शुरुआत कब होती है? जब टेस्ट, उसको वो टेस्ट नहीं मिलता है, चैंटिंग में हो गया, हियरिंग में हो गया, एसोसिएशन में हो गया, सेवा में, जो भी आप लोग, उसके अंदर उसको कोई टेस्ट नहीं है, तो फिर उसको कहीं तो उसका फुलफिलमेंट ढूंढना है। क्योंकि बिना टेस्ट के हम कुछ नहीं कर सकते। एक मैं भौतिक उदाहरण आपको दूंगा, एक सिगरेट की कंपनी है, एक सिगरेट की कंपनी होपफुल क्यों होती है अपने बिजनेस के लिए? क्यों होपफुल होती है एक सिगरेट की कंपनी? मैन्युफैक्चर किए जा रही रोज इतने सिगरेट्स, उनका कॉन्फिडेंस किसमें है? जो वो सिगरेट को पी रहे हैं और सिगरेट को पी के उनके अंदर जो टेस्ट उनको मिल रहा है वो होप है उस सिगरेट कंपनी का। मान लो अचानक ऐसे मनुष्य पैदा होने लग जाए जिनके जीभ में सिगरेट के लिए कोई टेस्ट बड ही नहीं है, है ना, पूरा बिजनेस ठप हो जाएगा उनका। ऐसे हम देखते हैं कि कितने अलग अलग प्रकार के टेस्ट्स हैं इस भौतिक संसार के, जिसके बलबूते पर हमारा जीवन और कितनों का जीवन चलता है। तो यदि ये पूछें कि मेरी भक्ति की ये जो गाड़ी है, इस भक्ति की गाड़ी का ईंधन वो टेस्ट है, जिसे प्रभुपाद ने वो एक मॉर्निंग वॉक में कहा, Why should you believe in भगवद गीता और कृष्णा। अलग अलग लोग कारण दे रहे थे, प्रभुपाद ने कहा बिकॉज यू एक्सपीरियंस कृष्णा। When you experience Krishna, you will never leave Krishna. उसको वो टेस्ट आ जाएगा। तो प्रश्न ये हमें अपने आप से पूछते रहना चाहिए कि मुझे जो थोड़ा बहुत, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि डिवोटी के अंदर भगवान कृष्ण और कृष्ण भक्ति को लेके कोई टेस्ट नहीं है, नहीं हो सकता ये। तो हां, यहां वहां हमको टेस्ट मिलता रहता है, है ना, कभी कभी कीर्तन में अचानक कीर्तन इतना अच्छा लगता है कि मन करता है कि ये कीर्तन चलता रहे चलता रहे चलता रहे। कई बार क्लास में भी ऐसा होता है, कि हम फुर्सत में हैं, ब्रेकफास्ट लेके बैठे हैं क्लास में, तो लगता है कि क्लास चलती रहे चलती रहे चलती रहे। डिफिकल्ट मैं चीजें ले रहा हूं, बाकी तो इजी तो आप लोग जानते ही हैं। प्रसाद की प्लेट आती है तो ये प्लेट खत्म ना हो, ये गुलाब जामुन, ये रबड़ी, बस भरती रहे भरती रहे। तो कभी कभी हमको टेस्ट आता रहता है, कभी भगवान के दर्शन इतने अच्छे लगते हैं इतने अच्छे लगते हैं कि मन करता है बस निहारते रहें निहारते रहें। कैसे लग रहे हैं आज के दर्शन? तो भगवान को निहारते रहें निहारते रहें, बुझती नहीं प्यास, ऐसा लगता है। और ऐसा भी लगता है कि न बुझे ये प्यास, चलता रहे चलता रहे। और फिर कई ऐसे दिन आते हैं कि एक माला जब या कीर्तन कर्कश लगता है, लेक्चर असहनीय इनटॉलरेबल, यहां तक कि प्रसाद के अंदर हम नुक्स निकालने लगते हैं। सब कुछ वही है परंतु हम प्रश्न पूछते हैं तो क्या, सो व्हाट। तो ये क्यों होता है? जैसे आपने चॉकलेट खाई होगी, मान लो कौन सी 5-star चॉकलेट, तो 5-star चॉकलेट यदि आपको कोई दे, तो 5-star चॉकलेट एक छोटा बच्चा भी जानता है कैसे खानी है 5-star चॉकलेट, रैपर को निकालकर। परंतु मान लीजिए कि कोई 5-star चॉकलेट विथ रैपर मुंह में डाल के चबाने की कोशिश कर रहा है, यहां चबाता है, क्या टेस्ट आता है उसको? रैपर का टेस्ट आता है। तो उसको लगता है नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, सब लोग कहते हैं 5-star चॉकलेट बहुत मीठी है अच्छी है, और जोर से चबाता है तो थोड़ा सा रैपर फट जाता है, ज्यादा जोर से चबाता है तो थोड़ा सा रैपर फट जाता है, जब थोड़ा सा पड़ जाता है थोड़ी सी चॉकलेट बाहर आती है उसमें से, है ना। फिर उसको लगता है हाँ देखो मैं बोला था, फिर वापस चबाता है थोड़ी सी और चॉकलेट बाहर आती है। होता क्या है, थोड़ी सी चॉकलेट बाहर आती फिर थोड़ा सा जो रैपर और पूरा भी मुंह में नहीं गया वो भी थोड़ा अंदर आता है। रैपर चॉकलेट, चॉकलेट रैपर, रैपर चॉकलेट, ये है हमारी भक्ति। और हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, ये स्ट्रगल क्यों होता है साधक के जीवन में कि रैपर निकालना वो कष्ट नहीं उठाना चाह रहे, लेकिन चबा चबा के सोचते हैं कि इस तरफ से वो चॉकलेट का टेस्ट नहीं आया, चलो इसको इस तरफ लेता हूं मैं। तो कई बार हमको लगता है कि मुझे ये सेवा में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है ज्यादा, तो चलो सेवा टेस्ट कर, सेवा चेंज करता हूं, तो मतलब वो उसको इधर से इधर ले रहा है, चाहे इधर से इधर ले, अगर रैपर ही नहीं निकाला चाहे कोई भी सेवा करो, उसको हर समय वो प्लास्टिक बीच में आता रहेगा, आता रहेगा, आता रहेगा। तो भौतिकतावादी मनुष्य कौन है, उसको वो चॉकलेट ही नहीं मिली है। शुद्ध भक्त कौन है, कोई रैपर नहीं है और प्योर टेस्ट आ रहा है उसको। और हम लोग बीच वाले हैं कि कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ, और हाँ कभी कभी क्या होता है कि हम लोग सिंसियर होते हैं चबाने में तो भगवान थोड़ा रैपर ज्यादा फाड़ देते हैं। तो हाँ, एक मिनट तक केवल चॉकलेट उसका जो मीठा टेस्ट है वो आता है, फिर अचानक चार दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, और वो अंधेरी रात नहीं रातें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि यदि हमें होपफुल रहना है, क्योंकि बहुत जरूरी है होपफुल रहना, आशा बंद जिसे कहते हैं, यदि हमें होपफुल रहना है तो हमारे टेस्ट को बरकरार रखना है। और टेस्ट को बरकरार रखने के लिए ऑफेंसलेस साधना भक्ति करनी है। यदि हम वैष्णव का अपराध, उनकी निंदा, उनको नीचे खींचना, पीठ पीछे बैक बाइटिंग, ये सब कुछ पॉलिटिक्स, अगर ये सारी चीजें हम करते रहेंगे तो होता क्या है कि भगवान फिर वो एक रैपर था उसके ऊपर और रैपर चढ़ाते जाते हैं। ले, हम जितना अपराध करते हैं तो रैपर चढ़ते जाता है, चढ़ते जाता है, चढ़ते जाता है, और फिर जब कोई भक्त बहुत सारे अपराध कर देता है तो उसे लगता है कि इसमें चॉकलेट है ही नहीं, तो वो थूक देता है। द मोस्ट अनफॉर्चुनेट स्पीशीज वन हु इज अ वैष्णव अपराधी, द मोस्ट अनफॉर्चुनेट स्पीशीज इन द एंटायर क्रिएशन ऑफ कृष्ण। तो होपफुल, जब हम होपफुल होते हैं तो हाँ, हम आशा से साधना भक्ति प्रारंभ करते हैं, तो नेक्स्ट स्टेज पेनफुल, ये जो पेनफुल स्टेज है, अब ये भक्ति के अंदर ये जो पेनफुल स्टेज है, ये सभी भक्तों को इस स्टेज से गुजरना पड़ता है। भगवान अपने सभी भक्तों को इस चुनौती से या इस कसौटी पर रखते हैं। तो पेनफुल कृष्ण भक्ति के अंदर ये पेन क्यों है, क्यों होना चाहिए? आप लोग तो बोलते हैं गोलोक वृंदावन में हर एक शब्द वो गीत है, हर एक जो स्टेप है, कदम है, वो नृत्य है, तो फिर यहां पर ये इतना पेनफुल, या कई बार हम भक्तों के जीवन में, पांडवों के जीवन में, यहां तक कि ब्रजवासियों के जीवन में सब कुछ इतना पेनफुल क्यों दिखता है? तो सबसे पहला कारण है वो पेन क्यों है, कृष्णा सर्जरी, है कि नहीं। अब सर्जरी वो किस हद तक पेनफुल रहेगी, जिस हद तक वो डिजीज है उसके अंदर, है कि नहीं। तो हम देखते हैं कि कई बार अब अगर कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर को बोले कि डॉक्टर पेनलेस सर्जरी मेरी करना, हाँ भाई हमसे जितना होगा एनेस्थेसिया लगाएंगे तभी हम लोग काट छाट सकते हैं आपको, परंतु वापस जब ऑपरेशन हो जाता है तो वापस आपको होश में लाना है ना कि नहीं, वैसे ही। तो जब सर्जरी के बाद जब पेशेंट होश में आता है तब वो पेन उसके शुरू होते हैं, फिर उसको पेन किलर देना पड़ता है। परंतु यदि वो ये एक्सपेक्ट करे कि मेरा ट्यूमर भी निकल जाए, दर्द भी ना हो, पेन किलर भी ना लेना पड़े, सब कुछ विन विन नहीं होता है, पहले लूज लूज। कितने समय तक हमको उस दौर से गुजरना पड़ता। तो भक्ति पेनफुल नहीं है, प्रॉब्लम क्या है, हमारा डिजीज इतना इंटेंस है उसके वजह से हमको शुद्ध करने के लिए और डिजीज से हमको मुक्त करने के लिए भगवान को सर्जरी करनी पड़ती। तो हमको ये होप्स नहीं रखना चाहिए कि, या ये नहीं समझना चाहिए कि भक्ति पेनफुल है। नहीं, भक्ति पेनफुल नहीं है, हमारा डिजीज वैसा है। अच्छा, फिर कई डिवोटीज जो कि शुद्ध हैं या सिंसियर हैं, या हो सकता है उनके अंदर वो डिजीज ना हो, फिर भी उनके जीवन में हम देखते हैं कठिनाइयां परेशानियां। तो ये जो दूसरा रीजन है, भगवान कृष्ण ही बताना चाहते हैं कृष्ण भक्ति इज नॉट फॉर द फेंट हार्टेड। अक्सर हम कहते हैं ना हिम्मत वालों के लिए है कृष्ण भक्ति, क्योंकि जब तक हम यहां से छूट कर जाएंगे नहीं तब तक वहां सुकून से नहीं रह पाएंगे। अगर हमारा वो जैसे हम कह रहे थे ना, कलेजा अगर फिर भी बटवे में अटका है, जैसे एक बार एक कार्टून मैंने दिखाया था कि वो हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना कर रहा है, एक पैर चप्पल पर रखे हुए मंदिर के दरवाजे के बाहर। तो कई बार ऐसा होता है कि हाँ हम लोग इत्मीनान से क्यों नहीं बैठ सकते मंदिर में, क्योंकि जीव कहां अटका हुआ है बाहर अलग अलग जगहों पर। तो अब देखिए, हम लोग जब आते हैं कृष्ण भक्ति में, तो कृष्ण भक्ति में आने के बाद सबसे पहले हमको क्या बताया जाता है कि हम बीमार हैं, आध्यात्मिक रूप से बीमार हैं। हम लोग ने अनुभव किया होगा, हम लोग ये समझ के आए थे कोई भी गीता कोर्स में या कोई वेडनेसडे प्रोग्राम में या पहली दफा संडे फीस्ट में या फर्स्ट लेक्चर जब हमने अटेंड किया, तो हम इस प्रकार से आए थे अटेंड करते हुए कि मेरे को क्या प्रॉब्लम है, मैं तो ऐसे ही देखते हैं ये लोग, इनको क्या प्रॉब्लम है। कई बार देखो हम कितने इग्नोरेंस में रहते हैं कि हम लोग मंदिर में एंट्री करते हैं ये देखते हुए ये लोगों को क्या प्रॉब्लम है देखता हूं मैं, और फिर जब लेक्चर में बैठते हैं तो लेक्चर में हमको सूचित किया जाता है। कैसे सूचित किया जाता है, आपको शायद पता नहीं होगा कि आप बीमार हैं। अच्छा, ये तो अलग प्रकार का हॉस्पिटल है। तो मेरे अनुसार अगर कोई पूछे कि सबसे बड़ा रोग क्या है, जैसे कई बार लोग बोलते हैं ना सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, एक वो है मुहावरा ही, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, वो भी होता है भक्ति में आते हैं तो वो भी एक रोग लेकर आते हैं कि मेरे जिनको मैं पीछे छोड़ के आया हूं वो लोग क्या कहेंगे। परंतु मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे बड़ा रोग किसी बद्ध जीव का यदि हो सकता है, न तो वो कैंसर है न वो ये एड्स वगैरह ये सब कुछ नहीं है, सबसे बड़ा रोग क्या है कि उसे पता ही नहीं है कि उसे रोग है। इमेजिन, या इफ आई पुट इन इंग्लिश, द ग्रेटेस्ट डिजीज इज टू डिसएग्री दैट आई एम डिजीज्ड एंड द बिगिनिंग ऑफ ट्रीटमेंट इज टू एडमिट दैट आई एम डिजीज्ड। कई जन्म लग जाते हैं ये एडमिट करने के लिए, क्योंकि अहंकार जो है ना वो हमको एडमिट नहीं कराता है कि मैं बीमार हूं। मैं कैसे बीमार हो सकता हूं, मेरे सारे रिपोर्ट्स अब तक नॉर्मल हुए हैं, कभी मुझे सर्दी खांसी कुछ नहीं हुआ। या ये कैसे कह सकते हैं लेक्चर में ऊपर बैठे हुए कि मैं अटैच्ड हूं, या हम सब के अंदर काम क्रोध लोभ मोह मत्सर इत्यादि ये सब कुछ है। जैसे प्रभुपाद ने इनिशियल डेज में, प्रभुपाद का वो बहुत कॉमन स्टेटमेंट देखते हैं हम भी पहली बार जब इस्कॉन के लेक्चर्स में बैठे तो सुना ये सिद्धांत सुनने में आया। प्रभुपाद जब कहते थे, सो यू आर नॉट दिस बॉडी, प्रभुपाद अपने लेक्चर में बहुत बार बोलते थे यू आर नॉट दिस बॉडी। तो एक वो आगे चल के प्रभुपाद के शिष्य बने तो उनको ये स्टेटमेंट समझ में पूरा पूरा नहीं आ रहा था, क्योंकि वो फिर बार बार अपने शरीर की ओर देखते रहे थे। ये स्वामी जी ऊपर बैठ के बोल रहे हैं यू आर नॉट दिस बॉडी, तो फिर ये तो उन्होंने एक बार प्रभुपाद को पूछ लिया, प्रभुपाद ने बोला यू आर नॉट दिस बॉडी, तो उन्होंने बोला देन हूज बॉडी, हूज बॉडी एम आई। तो सोचो हम लोग कितने दूर जा चुके हैं ऐसे सिद्धांतों से कि ये सारी बातें समझने के लिए कितना समय लगता है। हम शरीर नहीं, इसको समझने के लिए। तो ये जो सेकेंड स्टेज है, व्हेन वी आर होपफुल वी एक्सपीरियंस द पेनफुल सिचुएशन दैट वी आर डिजीज्ड, देन पेनफुल सिचुएशन से बाहर आने के लिए नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, वी हैव टू बी फेथफुल। अब होपफुल और फेथफुल में अंतर है। होपफुल मतलब कोमल श्रद्धा जिसको बोलते हैं, कि हाँ हम एक जिज्ञासा या एक आशा से आए। फेथफुल का मतलब क्या है कि जब हमारी श्रद्धा वो दृढ़ होती है। अब इसमें देखिए दो प्रकार है, एक्टिव फेथ और पैसिव फेथ। तो पैसिव फेथ क्या है, निष्क्रिय श्रद्धा जिसको कहेंगे, वो क्या है कि हाँ भगवान हैं, आप बोल रहे हो कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण हैं, ठीक है मान लिया, नमस्कार कर लिया भगवान के सामने, आप कह रहे हो रोज आके नमस्कार कर, ठीक है रोज कर लेंगे, तो उतना तक ठीक है। परंतु भगवान के दिए गए आदेशों को अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को बदलना भगवान के नियमानुसार, जैसे पिछली बार हम चर्चा कर रहे थे, व्हेन यू यूज योर फ्री विल टू चेंज योर लाइफस्टाइल, देन दैट चेंज्ड लाइफस्टाइल विल अगेन चेंज योर फ्री विल, रेसिप्रोकल। तो एक बहुत ही सुंदर सिद्धांत, इसको आप ध्यान से पढ़िए, एक्टिव फेथ के लिए प्रे as if everything is dependent on Krishna and act as if everything is dependent on me. तो जब हम भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं तो इस आशा से प्रार्थना मत कीजिए कि मुझे अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, भगवान सब कुछ करेंगे। देखिए वो अर्जुन को भगवान ने विश्वरूप दिखाया, अर्जुन के रथ के घोड़ों को हांका, रोज घोड़ों को खिलाते थे, पिलाते थे, साफ करते थे, रथ को ठीक कर कर संवार कर लेकर आते थे, सब कुछ करते थे, परंतु जब एक्चुअल परफॉर्मेंस युद्ध का, भगवान ने कहा यू हैव टू डू दैट, मैं तुम्हारे लिए गांडीव नहीं उठाऊंगा। क्योंकि अर्जुन के अंदर भगवान के प्रति ऐसी श्रद्धा थी, इसलिए अर्जुन जो हैं वो भगवान से जब प्रार्थना भी किए तो उनकी प्रार्थना के अंदर इतना सब्सटेंस था। जैसे कि हम एक बार बता रहे थे वो जो प्रसंग हुआ, दुर्योधन और अर्जुन भगवान के समक्ष गए और दुर्योधन ने नारायणी सेना मांग ली, अर्जुन ने केवल भगवान श्री कृष्ण को मांगा, स्वेच्छा से, अपने फ्री विल से भगवान श्री कृष्ण को मांगा। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को परख रहे थे और परखते हुए अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण थोड़ा विनोद में, हंसी मजाक में वो अर्जुन को कहे जब दुर्योधन चला गया, तो भगवान अर्जुन से कहते हैं अर्जुन समझदारी नहीं की तूने, मुझे लगता था कि तू समझदार है परंतु नहीं, तूने समझदारी नहीं की। तो अर्जुन पूछते हैं क्यों, क्या हुआ भाई? अरे दुर्योधन ने पूरी नारायणी सेना मांग ली मेरी और मैंने कहा था कि मैं जिस किसी के भी साथ जाऊंगा मैं निहत्ता रहूंगा, कभी मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा वो पूरे युद्ध में। तब फिर भगवान अर्जुन से कहते हैं हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा उदास, हार निश्चित है तेरी, हरदम रहेगा उदास, दुर्योधन तो ले गया माखन, छाछ रह गई तेरे पास। अर्जुन ने इस पर कहा, आपको याद होगा, जीत निश्चित है मेरी, दास कभी ना होगा उदास, अरे मैं माखन लेकर क्या करूं जब माखन चोर है मेरे पास। है कि नहीं? परंतु यशोदा माई माखन चोर उनके पास था फिर भी वो माखन बिलोती थी, है ना? हम लोग क्या करते हैं, हम लोग तालियां मार लेते हैं, माखन चोर है मेरे पास, अब तो अपने आप फ्रिज में माखन आता जाएगा। तो यशोदा माई बताती हैं कि उनके पास भी माखन चोर, उनका खुद का लाला, परंतु फिर भी वो माखन बिलोती थी, माखन निकालती थी। तो क्या है परफेक्ट बैलेंस? प्रे एज इफ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन कृष्णा एंड एक्ट एज इफ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू। This is called being faithful. How will you continue to remain faithful? अच्छा आप सीक्वेंस ध्यान में रखना कि ये सब कनेक्टेड है। होपफुल, वेन यू आर होपफुल देन यू एक्सपीरियंस पेन, योर पेन कैन बी टॉलरेटेड वेन यू आर फेथफुल। एंड यू विल रिमेन फेथफुल व्हेन यू आर माइंडफुल. तो मैं दो स्थिति प्रस्तुत करना चाहूंगा आपके सामने. बिफोर कमिंग टू कृष्ण भक्ति, ये हमारा मन. अब ये मन जो है कितना भी कहो इसके बारे में लेक्चर में कमी रहता है हर समय, है ना. बहुत ही हॉट टॉपिक है ये माइंड. तो बिफोर कमिंग टू कृष्ण भक्ति और हमारा ये मन अभी की स्थिति में, कृष्ण भक्ति में आने के बाद ये जो मन है हमारा, बदलाव देखा है ना आपने, कुछ तो बदलाव मन के अंदर आपने देखा है कि भक्ति में आने से पहले और अब दोनों में अंतर. तो मैं दो उदाहरण से इसको प्रस्तुत करना चाहूंगा. बिफोर कमिंग टू कृष्ण भक्ति आवर माइंड was on the driver's seat and we were on the passenger seat. तो जो भक्ति में आने से पहले क्या स्थिति थी कि हमारे जीवन की गाड़ी हमारा अनियंत्रित मन चला रहा था, है ना. अब मान लो मालिक है लेकिन यदि उसे गाड़ी चलाना नहीं आए तो उसको ड्राइवर करना पड़ता है. और जब ड्राइवर जानता है कि मालिक को गाड़ी चलानी नहीं आती और बगल में बैठा हुआ है तो कई बार मालिक जो है वो ऊंघता रहता है. ऊंघना समझते हैं, गाड़ी में डुलकियां मारता रहता है, ऐसे सोता रहता है. तो जब ड्राइवर देखता है कि मालिक बगल में सो रहा है या डुलकियां मार रहा है तो ड्राइवर यहां वहां कैसे भी गाड़ी चलाता है, ये स्पीड पे वो स्पीड पे. और वो मालिक क्योंकि उसको गाड़ी चलानी नहीं आ रही है और कंट्रोल नहीं है उसके हाथ में स्टीयरिंग का, तो मालिक जो है वो ड्राइवर की अंधाधुन गाड़ी चलाने के वजह से त्रस्त रहता है. परंतु स्थिति ऐसी है कि उसे पता ही नहीं है कि उसकी गाड़ी कोई और चला रहा है. ये तो बहुत ही दयनीय स्थिति हो जाती. When materialistic people don't even know that it's their mind who is driving their life crazy. Imagine, invisible driver. And you are being tossed here and there in that car. तो ठीक है, हम भक्ति में आए, मन के बारे में इतना सब कुछ सेमिनार सुन लिया, बोला गया मन 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 को लगाओ, मन मना भव मत भक्तो, चैंटिंग करते समय मन को खींच कर लाना है, ये वो इतना सब कुछ सुना. तो अब क्या हुआ है, अब हमारी स्थिति क्या है कि अब माइंड जो है उसको हमने ड्राइवर सीट से उठा के पैसेंजर सीट में बिठा दिया. तो इधर बैठ, हमने 6 दिन का गीता कोर्स किया, भक्ति शास्त्री जो भी कुछ हो गया, अब हमने ड्राइविंग सीख ली है. दीक्षा मतलब ड्राइविंग लाइसेंस भी मिल गया है ना, अब हम चला रहे हैं. तो क्या वो माइंड जो है बगल में बैठा है वो चुप है? वो गाड़ी नहीं चला रहा है, लेकिन हम जो गाड़ी चला रहे हैं हमको बीच बीच में वो देखा, वो बिलबोर्ड देखा, हाँ वो सैंडविच स्टॉल देखा, वो पाव भाजी का स्टॉल देखा, ये देखा वो देखा. तो हम गाड़ी चला रहे हैं मतलब चैंटिंग कर रहे हैं, हियरिंग कर रहे हैं, लेकिन हमारा माइंड बगल में बैठ बैठ के हमको ऐसे पोक कर करके, उंगली हमारे काख में डाल डाल के ऐसे ऐसे करके हमको बोल रहा है, देख उधर देख, हम गाड़ी चला रहे हैं इधर देखते हैं. फिर हम वापस से, हमको एक डिवोटी बोलता है, ए नजर सड़क पर. फिर होता ना वो हाईवे पे आप गाड़ी चलाते हो तो अलग अलग साइंस लगाते हैं ना, नजर हटी दुर्घटना घटी, है ना. तो जैसे हम ऐसे साइंस देखते हैं, भक्ति में कोई डिवोटी बोलता है आप आजकल सीरियस नहीं हो रहे हैं भक्ति के अंदर, फिर वापस से हम लोग सीरियस हो जाते हैं, चला रहे हैं। इमेजिन करो, हाँ आप अपने आपको इमेजिन करो कि आप वो गाड़ी चला रहे हो और आपका वही पुराना वाला मन, कौन सा वाला, पुराना वाला मन बगल में बैठा है और आपको बार बार से उंगली से टोक टोक कर कह रहा है ये देख वो देख, इसको खा उसको खा, क्या चल रहा है सड़क पे, खाली गाड़ी चलाएगा तू, बोर नहीं हो रहा है तू? हाँ, और हम लोग गाड़ी चलाते चलाते कभी यहां कभी वहां, होता है ना चैंटिंग में ही होता है, फिर हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, यहां से वहां रडार रडार की तरह चैंटिंग या हियरिंग और सब कुछ के अंदर। तो वी कैन नॉट बी माइंडफुल ऑफ कृष्णा। इसलिए जो प्योर डिवोटी है, आजकल आप देखो गाड़ियों के अंदर जीपीएस सिस्टम होता है। जीपीएस सिस्टम क्या है, उसमें आप टाइप कर दो आपका डेस्टिनेशन और फिर वो जीपीएस सिस्टम आपको गाइड करता है। तो प्योर डिवोटी कौन है, जिसने इस मन को जो बगल में बैठा है उसको जीपीएस बना लिया कि उसके डेस्टिनेशन को गाइड करने के लिए वो बैठा है, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए नहीं है। ही बिकम्स द गाइड नॉट द मिसगाइड। दिस इज हाउ वी विल ट्रेन टू बिकम माइंडफुल ऑफ कृष्णा। एंड इन ऑर्डर टू बिकम माइंडफुल ऑफ कृष्णा वी हैव टू बिकम केयरफुल ऑफ कृष्णा और कृष्णा कॉन्शियसनेस। अच्छा, अब इसमें देखो सावधान रहना, कितनी बार हमको इतने सारे जो ये ऑफेंसेस हैं, नियम हैं, लेक्चर्स के अंदर पावर पॉइंट यहां वहां से पॉइंट्स बताए जा रहे हैं, कभी वीडियो कभी एग्जाम्पल कभी स्किट, हाँ सबके द्वारा क्या बताया जा रहा है हमको, इतने वर्षों से क्या सुनते आ रहे हैं। सावधान भक्ति में कैसे हमें सावधान सावधानी बरतनी है, नजर हटी दुर्घटना। तो मैं दो उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा, भीष्म पितामह और जटायु। बहुत सुंदर उत्प्रेक्षा की गई है। भीष्म पितामह ने अपने जीवन में एक गलती की जिसके वजह से उनको बाणों की शैया पर लेटना पड़ा, और उनकी एक गलती क्या थी, जब उनको क्रोध करना चाहिए था वो शांत रहे द्रौपदी वस्त्र हरण के समय, और जटायु ने अपने जीवन में एक ही दफा क्रोध किया और प्रभु श्री राम उनके अंतिम संस्कार के लिए आए। तो यहां पर क्या समझ में आ रहा है कि क्रोध जब करना चाहिए जब हम नहीं करते, किसके ऊपर करना चाहिए जब हम नहीं करते, तो क्या होता है, भीष्म पितामह जैसे महाजन को भी बाणों की शैया पर लेटना पड़ता है, और जटायु एक गिद्ध पक्षियों में जो यदि कुरूप से कुरूप पक्षी यदि कोई है तो वह है गिद्ध। हमने तो कभी देखा भी नहीं होगा परंतु चित्र देखे हैं या अभी देखा भी होगा, तो गिद्ध जो है क्या कहते हैं आप लोग जानते हैं, गिद्ध वल्चर, दिखने में बहुत कुरूप दिखता है। तो गिद्ध जैसा पक्षी जब वो अपने क्रोध को अपने पूरे जीवन काल में एक ही समय परंतु सही समय और सही व्यक्ति के ऊपर उतारता है तो तर जाता है, वो है जटायु। तो यदि हम ये समझें कि मैं बहुत केयरफुल हूं, भीष्म पितामह जो इतने केयरफुल परंतु एक नेग्लिजेंस की वजह से बाणों की शैया, therefore a devotee has to be proactive, इतना हमको बताया जाता है कि हाँ, हम लेक्चर में जब सुनते हैं, उस समय जब नोट्स निकालते हैं, जब लेक्चर में ये सारे पॉइंट्स हमारे अंदर ऐसा लग रहा है कि उतर रहे हैं, उतर रहे हैं, हाँ, इसका आवेश हो रहा है, उतर के चले भी जाते हैं। फिर जैसे ही क्लास खत्म हो गया, खिचड़ी की लाइन कितनी लंबी है, लंबी हो गई यार लाइन, पहले उड़ जाना चाहिए था। वो पॉइंट तो सुने हुए थे, पिछले हर रविवार को ही दोहराते रहते हैं, खिचड़ी की लाइन लंबी हो गई यार इसके चलते। तो इतना सब कुछ जो शुरू में लगा कि हाँ वाह क्या एकदम अफलातून पॉइंट है, हाँ ये वो सब, खिचड़ी की लाइन देखते ही दिल की अरमा आंसुओं में बह गए। और वो कौन से आंसू? खिचड़ी की लाइन को देख के आंसू। इतने अरमा बांधे थे लेक्चर के समय कि हाँ मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, बस ये लास्ट संडे है, भगवत धाम में जाना है अभी मेरे को। तो होता है ना, हम लोग कितने रोज अपने आप को चैंटिंग के द्वारा, हियरिंग के द्वारा साफ सफाई में लगते हैं, फिर गंदा कर लेते हैं। रोज साफ सफाई की, फिर कूड़ा करकट। क्षमा करना ये उदाहरण मैं जो आपको अभी देने वाला हूं, परंतु शायद पॉइंट समझ में आ जाएगा ऐसा लगता है। कभी आपने अनुभव किया है, आप टॉयलेट गए पॉटी करने और कार्यक्रम होने के बाद आपको पता चला कि नल में पानी नहीं है, और फ्लश में भी पानी नहीं है, फ्लश भी काम नहीं कर रहा है, डब्बा भी खाली है, नल में भी पानी नहीं है। कभी तो जिंदगी में ऐसी सिचुएशन में आप आए होंगे, हाँ? इसको धर्म संकट भी नहीं बोल सकते। और कल्पना करो कि आप किसी के घर पे हो और बाहर कोई वेट कर रहा है आपकी, और विकट पे विकट परिस्थिति होती जा रही है कि नहीं। तो बुद्धिमान टॉयलेट यूजर कौन है कि वो कार्यक्रम शुरू होने से पहले चेक कर ले पानी है कि नहीं, है ना? उसको कहते हैं प्रोएक्टिव। बहुत से हम प्रोएक्टिव के उदाहरण देते हैं, ये लेटेस्ट उदाहरण है। और मेरे ख्याल से ये उदाहरण भूलेंगे नहीं आप, है कि नहीं? तो ये भौतिक संसार में जाकर जो भौतिकतावादी लोग हैं उनके साथ संग करना मतलब पॉटी, दुर्गंध, गंदगी, ये सब कुछ है। तो हाँ, वो तो करना ही पड़ेगा, जैसे पॉटी तो करनी पड़ेगी, है ना? तो बाहर जाके वो पॉटी का संग तो होगा, परंतु एक प्रोएक्टिव डिवोटी कौन है जो पॉटी का संग करने से पहले चेक कर लेता है कि भाई उसको साफ करने का साधन है कि नहीं। थोड़ा स्ट्रांग एग्जांपल है, हाँ? अ प्रोएक्टिव डिवोटी इज द वन हु मेक श्योर दैट आई एम गोइंग आउटसाइड टू गेट कंटेमिनेटेड, एम आई कैरिंग ऑल द मेजर्स टू क्लीन माई सेल्फ आफ्टर द कंटेमिनेशन। इसको कहते हैं बीइंग केयरफुल। आप लोग हैं अभी भी साथ में? लग नहीं रहा है। खैर, मुझे तो पॉइंट पूरा करना है। तो आप अब नेक्स्ट, व्हेन यू आर केयरफुल देन वन ऑफ द वेज यू कैन बी केयरफुल इज व्हेन यू आर हेल्पफुल. अब देखो एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा आपको. एक किसान था जो कि मक्के की खेती किया करता था. मक्का होता ना मक्का कॉर्न, तो मक्के की खेती किया करता था और सबसे अच्छा उसका मक्का उगता था, उत्कृष्ट क्वालिटी का बेस्ट क्वालिटी कॉर्न उगाता था वो. तो एक बार उसको पूछा गया कि भाई तेरा ये जो कॉर्न है ये इतना अच्छा क्वालिटी का कैसे उगता है. बहुत सुंदर इसने रीजन दिया. इसने कहा कि मेरे जो बगल के खेत के किसान हैं मैं उनको बेस्ट क्वालिटी कॉर्न देता हूं उगाने के लिए. तो ये तो भाई बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तुम तो भाई तुम्हारे कॉम्पिटिटर को बेस्ट क्वालिटी कॉर्न दे रहे हो उगाने के लिए, मूर्खता हुई. तो उसने उसके पीछे साइंस बताया कि जब मेरे बगल वाला खेत उसके अंदर यदि मक्का अच्छे क्वालिटी का उग रहा है तो उसका जो क्रॉस पॉलिनेशन हवा से वहां से जो क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो अच्छे क्वालिटी का क्रॉस पॉलिनेशन वापस मेरे ही खेत में आने वाला है. इसको कहते हैं हेल्पिंग ईच अदर इन डिवोटी कम्युनिटी. कम्युनिटी मींस इम्यूनिटी. कम्युनिटी मींस इम्यूनिटी. जैसे मैंने देखा बहुत सुंदर, एक बार राधा गोपीनाथ मंदिर में हम लोग जपा सर्कल में बैठते रोज, तो मैं देखा कि मुझे ये आदत नहीं थी कि जो सो रहा है उसको बार बार उठाता रहूं. थोड़ा मुझे वो अजीब लगता था. एक मैंने डिवोटी को देखा, वो बार बार अपने बगल वाले डिवोटी को, वो मतलब बेचारे ने अभी शुरू ही किया है सोना. मैं सोचा थोड़ी देर सो लें तो बाद में उठा लेना. उसने अभी वो शुरू भी नहीं की डुलकी उसकी, तुरंत उसको उठा देता था बार बार उसको. तो मैंने एक बार पूछा कि इतनी बार तुम क्यों उठाते हो उसको. ये डिवोटी ने जो रीजन दिया अभी तक मैं भूलूंगा नहीं. कई बार हम लोग क्यों उठाते हैं, मैं जगा हूं ये सो रहा है, मेरे पास पूरा अधिकार है इसको उठाने का क्योंकि मेरे अंदर जगे रहने का गुण है. कई बार हम उस भाव से उठाते हैं किसी को जप में. परंतु ये डिवोटी ने कहा कि प्रभु जी ये जो सोता है ना, तो जब मैं इसको देखता हूं सोते हुए तो मेरा एंथुजियाज्म कम हो जाता है चैंटिंग में, परंतु जब इसको मैं उठाता हूं ना तो ये उठने के बाद जो एकदम तीव्रता से चैंटिंग करता है तो मेरा एंथुजियाज्म बढ़ जाता है. तो मैं मेरे एंथुजियाज्म के लिए इसको उठाता हूं. इसको कहते हैं बीइंग हेल्पफुल. तो हम यदि किसी दूसरे बगल में बैठे हुए डिवोटी को सहायता करें भक्ति में आगे बढ़ने के, क्यों, क्रॉस पॉलिनेशन. याद रखना कौन सा उदाहरण है ये, मक्के वाला क्रॉस पॉलिनेशन. अक्सर क्या होता है, मक्का छोड़कर हम मुक्का मारते हैं. तो मक्का छोड़ें और मक्का से सीखें. तो दो उदाहरण है, एक है कालकृष्ण दास की, कैसे कालकृष्ण दास, उनको जब उनके जीवन में परेशानी आई कठिनाई आई, चैतन्य महाप्रभु से थोड़ा वो भ्रमित होकर भट्टाहारी उनके साथ चले गए, तो चैतन्य महाप्रभु ने एक तरीके से उनको बहिष्कृत कर दिया कि इसे ले जाओ मुझे जरूरत नहीं इसकी, आधा टाइम तो इसको संभालने में जा रहा है मुझे. तो अभी देखो चैतन्य महाप्रभु ने बहिष्कृत किया या छोड़ दिया, परंतु नित्यानंद प्रभु, श्रीवास ठाकुर, हरिदास ठाकुर, ये बाकी सारे जो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद, उन्होंने कालकृष्ण दास की मदद की और उन्होंने कालकृष्ण दास को एक ऐसी सेवा दी कि तुम जाओ नवदीप जाओ, वहां पर जाकर जो संग तुम्हें चैतन्य महाप्रभु का मिला है वो दूसरों को बताओ. सो दे एंगेज्ड हिम, दे हेल्प्ड हिम. दिस इज कॉल्ड बीइंग हेल्पफुल. एक और दशम स्कंद में बहुत सुंदर उदाहरण है, जब भगवान श्री कृष्ण कालिया के फनों में अटके हुए थे, उस समय पूरा वृंदावन सारे ब्रजवासी वहां पर पहुंच गए। नंद यशोदा उन्होंने जब देखा उनके कृष्ण, वो कालिया और ऐसा बड़ा ये कालिया, उसके अंदर छोटे से उनके कृष्ण, वो अटके हुए हैं, तो नंद यशोदा उनको तो सहन नहीं हुआ, वो बेहोश हो गए। अब यहां पर सबसे जो मार्मिक बात यह है कि सारे ब्रजवासी जितने वहां पर थे वो सब एकजुट हो गए नंद यशोदा को हेल्प करने के लिए, उन्हें फिर से होश में लाने के लिए। इसलिए ब्रजभाव क्या है? ब्रजभाव ये है कि वो हर समय एक दूसरे को मदद करते हैं भगवान श्री कृष्ण को याद करने और कराने में। दिस इज कॉल्ड ट्रू हेल्प। जब हम एक दूसरे को मदद करें, सहायता करें भगवान श्री कृष्ण को याद करने में और कराने में। उत्थाय गोप्यो पररात्र भोगे स्मृत्वा यशोदा सुत बाल केलिम गायन्ति प्रोच्चै दधिमन्यमानो गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। बिल्व मंगल ठाकुर उन्होंने ये बहुत सुंदर पद लिखे हैं, गोविंद दामोदर अष्टकम, गोविंद दामोदर माधवेति। उसके अंदर ये कहते हैं उत्थाय गोप्यो पररात्र भोगे, कि रोज सुबह जब वृंदावन की गोपियां उठती थीं, तो उठते ही सबसे पहले वो क्या सोचती थी, ये बिल्व मंगल ठाकुर इस श्लोक में कह रहे हैं। उत्थाय गोप्यो पररात्र भोगे स्मृत्वा, स्मृत्वा मतलब स्मरण, स्मृत्वा यशोदा सुत बाल केलिम। यशोदा सुत, अपने सुत के बारे में नहीं, अपने बेटे के बारे में नहीं कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, या मेरा बेटा उसके लिए मैं क्या नाश्ता बनाऊं, या मेरा बेटा कहां पर है। ये गोपियां पूरे वृंदावन में, जो भी गोपी, वो उठते ही सबसे पहले यशोदा सुत, यशोदा नंदन, भगवान श्री कृष्ण का स्मरण, सुत बाल केले, उनके बाल लीलाओं का स्मरण करते हुए उठती थी कि आज कृष्ण कैसे दिखेंगे, आज कृष्ण कौन सी लीला करेंगे। इसे कहते हैं निस्वार्थ भक्ति। इतना ही नहीं, गायन्ति प्रोच्चै, वो मिलती थी, जब भी वो मिलती थी गोपियां, जब मिलती थी तो वो एक दूसरे के साथ क्या वार्तालाप करती थी, वार्तालाप उनका गीत के रूप में होता था, और जोर जोर से गायन्ति प्रोच्चै दधिमन्यमानो, कि जो भगवान की माखन चोर की लीला, क्योंकि उस समय भगवान सबसे ज्यादा वो लीलाएं करते थे माखन से रिलेटेड, तो वो लीलाओं का वर्णन उच्च स्वर में, वो आपस में उसका वार्तालाप कर उसका गीत गाती रहती थी। और इसलिए बिल्वा मंगल ठाकुर कहते हैं गोविंद दामोदर माधवेति, कि ऐसे वृंदावन की जो गोपियां हैं, ऐसे ब्रजभाव को मैं नमन करता हूं, बिल्वा मंगल ठाकुर कहते हैं। इसे कहते हैं वैकुंठ भाव, जहां पर कोई कुंठा नहीं किसी के लिए, हेल्पफुल फॉर एवरीवन। जब ये कम्युनिटी हमारी बनेगी यहां पर नासिक में, तब जाकर इम्यूनिटी, कि हम हमारे अंदर वो शक्ति भगवान की कृपा द्वारा प्राप्त होगी, कि फिर न तो हमारे आंतरिक राक्षस न बाहर से हमें कोई कुछ कर सकेगा, कोई हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता यदि हमारा ये भाव हो जो वृंदावन के गोपियों का भाव कि उठते ही वो केवल यशोदा सुत के विषय में सोचती थी और दिन भर केवल उन्हीं का गायन कीर्तन स्मरण सेवा उसी में लगा रहती थी। दिस इज कॉल्ड बीइंग हेल्पफुल। एंड हाउ विल यू बी हेल्पफुल व्हेन यू आर ग्रेटफुल, कृतज्ञता का भाव। अब ये कृतज्ञता का भाव जो है बस दो चीजें पर अगर हम फोकस करें तो बहुत आसान है कृतज्ञता का भाव लाना। What I have been blessed with right now, कि मेरी औकात नहीं है, मैं लायक नहीं हूं। अभी इस समय श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद गोवर्धन लीला और वो भी साक्षात श्री राधा मदन गोपाल जी ललिता विशाखा गौर निताय गुरु परंपरा शिल प्रभुपाद एक तरफ हैं, इनके सानिध्य में इनके समक्ष यहां पर बैठकर हम जो डायरेक्टली अमल पुराण से सुन रहे हैं क्या हमारी औकात है? न तो बोलने की औकात है न सुनने की औकात है। जब ये बात हमें इसका एहसास होगा तब कृतज्ञता का जो भाव है उसकी शुरुआत होगी। देन विल बिगिन द क्वालिटी ऑफ ग्रैटिट्यूड। टू थिंग्स, व्हाट आई हैव बीन ब्लेस्ड विथ, व्हाट शुड आई एक्चुअली डिजर्व, मैं किसके लायक हूं, कैसे कुकर्म कर कर मैं बैठा हुआ हूं, क्या मुझे मेरे को मेरे भाग्य को देना चाहिए था और उसके बदले मुझे क्या मिल रहा है। जैसे ध्रुव महाराज ने कहा कि अरे मैं तो फूटे हुए कांचों के पीछे जा रहा था और ये बहुमूल्य हीरा मिल गया है। कई बार हम लोग अहंकारवश क्या सोचते हैं कि टूटे हुए कांचों के बीच में मैं हीरा घूम रहा हूं। When we will have this gratitude, when we are grateful, then we come to the next fullness, when we'll become joyful. Or joyfulness, ये जो प्रसन्नता भक्ति में, प्रसन्नता ये किसके वजह से हो सकती है? जब हमारे अंदर निर्भयता हो, फियरलेसनेस। जब तक कि फियरलेस नहीं है हम या हम फियरफुल हैं तब तक हम कोई भी कार्य खुशी से नहीं कर पाएंगे। इसलिए याद है पिछले रविवार को मैंने एक सूत्र आपको समझाया था, न जीने का लालच न मरने का डर। जब हम उस स्थिति पे पहुंच जाएंगे न तो हमें इस भौतिक संसार में जीने का लालच है न मरने का डर, तब हम प्रसन्न, देन वी विल बी एक्चुअली हैप्पी। एक बहुत सुंदर कोट मैं आपको सुनाना चाहूंगा, मैंने अपना व्हाट्सएप का स्टेटस वो बना रखा है, द एक्चुअल फ्रीडम वन कैन अचीव व्हेन वन कम्स टू अ पॉइंट वेयर ही डजंट हैव टू इंप्रेस एनीवन, दैट इज एक्चुअल फ्रीडम। हमारा कितना प्रतिशत जीवन किसमें जाता है? इंप्रेस करने में। मेरा नाम यहां होना चाहिए, मेरा नाम वहां होना चाहिए, इतने लोग मेरे नाम की वाह वाह करनी चाहिए। एक्चुअल फ्रीडम स्टार्ट्स व्हेन वी कम टू अ पॉइंट वेयर वी डोंट हैव टू इंप्रेस एनीवन, दैट इज कॉल्ड रियल फ्रीडम। उसे कहते हैं स्वतंत्रता। जब तक हमारे जीवन में ये भाव रहेगा कि मुझे इसे इंप्रेस करना है, उसे इंप्रेस करना है, हम एक कैदी का जीवन जी रहे हैं, प्रिजनर. सो फियरलेस, फियरलेसनेस कम्स व्हेन देयर इज कंप्लीट डिटैचमेंट. जब हमारी आसक्ति होगी, कलेजा अटका हुआ है जैसे हम बता रहे थे यहां वहां, तो वो अटैचमेंट के वजह से या डिटैच नहीं है उसके वजह से डर, भय. एंड कंप्लीट डिटैचमेंट विल कम ओनली व्हेन देयर इज कंप्लीट अटैचमेंट फॉर कृष्णा. घड़ा हमारा कभी खाली नहीं रहेगा, या तो वो कृष्ण भक्ति से भरेगा या फिर माया देवी के पास बहुत कुछ है उसमें भरने के लिए. अब हमारे ऊपर है कि हम ढक्कन किसके लिए खोलें, माया देवी के लिए खोलें या भगवान के लिए खोलें. एंड व्हेन वी कम टू दिस स्टेज ऑफ प्योर जॉय, देन आवर भक्ति विल बिकम मीनिंगफुल. एंड मीनिंगफुल भक्ति मीन्स दैट भक्ति विच गोज बियॉन्ड द फॉर्म एंड वी अंडरस्टैंड द सब्सटेंस. जब हम गहराई में जाएंगे और उस भक्ति का असर हमारे जीवन में देखेंगे, तो जो सब्सटेंस है भक्ति का, वो सब्सटेंस हमारे भक्ति को मीनिंगफुल बनाएगा. नहीं तो जैसे मैंने एक बार एक वो कथा सुनाई थी कि वो शिष्य ने गुरु से पूछा कि गुरुजी आपने इतनी साधना दे दी परंतु कोई फर्क नहीं पड़ रहा. तो गुरुजी ने उसे कहा, एक लोटा मदिरा शराब का, और उसे कहा कि एक एक घूंट तो अपने मुंह में ले परंतु गले के नीचे वो शराब नहीं जानी चाहिए. थूकता रहे, थूकता रहे, थूकता रहे, तो एक एक घूंट पूरा लोटा वो शराब का उसने एक एक घूंट कर पी लिया परंतु गले के नीचे न जाने दिया. तो गुरुजी ने पूछा, नशा चढ़ा? नहीं, क्योंकि तूने शराब का केवल कुल्ला किया. तो भक्ति का तू खाली कुल्ला कर रहा है, इसलिए भक्ति का नशा नहीं चढ़ रहा. सो व्हेन वी टू परफॉर्म सब्सटेंशियल मीनिंगफुल सर्विस, देन दैट भक्ति विल गिव अस द किक. फिर लगेगा कि हां कुछ हो रहा है. एंड व्हेन वी परफॉर्म ऑल ऑफ दीज 9, अभी तक 9 मीनिंगफुल मिलाकर कितने हो गए पॉइंट्स, 9 पॉइंट्स. ये सारे 9 पॉइंट्स हम उसका पालन ठीक से करेंगे, देन भक्ति विल बिकम सिंपली वंडरफुल. चाहिए कि नहीं? डू यू ऑल वॉन्ट दैट भक्ति शुड बी सिंपली वंडरफुल? प्रभुपाद का एक पास टाइम है इसको लेकर, एक स्वीट इस्कॉन के अंदर है इस नाम से. तो ये स्वीट बनता है मिल्क पाउडर, बहुत सिंपल स्वीट है ये, मिल्क पाउडर, बटर और शुगर पाउडर, बस इसका मिश्रण है. और ये जब प्रभुपाद को दिया गया पहली दफा, प्रभुपाद ने जब अपने मुंह में ये स्वीट लिया, ये ऐसा स्वीट है कि मुंह में डालते ही गल जाता है. मिल्क पाउडर है, बटर है, शुगर पाउडर है. तो प्रभुपाद ने जैसे ही अपने जिह्वा पर वो स्वीट चखा तो प्रभुपाद के मुख से निकला सिंपली वंडरफुल. और उस स्वीट का इस्कॉन में नाम पड़ गया, प्रभुपाद द्वारा दिया गया नामकरण, सिंपली वंडरफुल. फिर प्रभुपाद ने कहा सो इस्कॉन मींस सिंपली वंडरफुल. डिवोटीज हु आर सिंसियर इन इस्कॉन आर सिंपली वंडरफुल. द ऑफेंसलेस चैंटिंग इज सिंपली वंडरफुल. द कृष्ण कथा सिंसियरली हर्ड इज सिंपली वंडरफुल. एंड द प्रसादम विच डिवोटीज टूगेदर वेन दे हेल्प ईच अदर एंथुजियास्टिकली एंड एंजॉय एंड रिलिश द प्रसादम इन congregational chanting of Krishna, that is simply Wonderful. So Prabhupada said, if you want to taste Krishna consciousness within ISKCON, you have to taste Krishna consciousness, which is simply wonderful. And that is how we come to the understanding that if you want to be full of Krishna, so we have to be hopeful. There will be pain, painful, faithful, mindful, careful, helpful, grateful, joyful. And then we will reach the stage when we will be simply, we will become simply wonderful for someone else. And this is the sum and substance when Prabhupada said that the goal of Krishna consciousness movement is when our minds are full of Krishna consciousness or Krishna smaran, when stomachs are full of Krishna prasadam, when hands are full of Krishna books and our pockets are empty, which means no attachment for this material world. Na jine ka lalach, na marne ka dar. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare. Jai Shila Prabhupada ki. एक लास्ट स्लाइड में भूल गया आप लोगों को दिखाना. When we are full with Krishna in that way, then from a fool we become a fragrant Hindi wala fool. किसी का कोई प्रश्न है? Any questions? Any comments? जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की.
इसलिए शिक्षाश्रम प्रभु की. हरे कृष्णा. कुछ सूचना इस प्रकार से है, आज हमारे मंदिर में 4 सत्संग कार्यक्रम है, 1000 भक्तों का प्रसाद बनने वाला है. तो आज के सुबह के भागवतम क्लास के जो प्रसाद स्पॉन्सर है वो है श्रीमान श्याम दिगंबर मोरे प्रभु. इन्होंने अपने पिता के स्मृति प्रीत्यर्थ दिगंबर मोरे इनके लिए अर्पण किए है. तो इनके पिता के लिए और पूरे परिवार के लिए हम प्रार्थना करेंगे 3 बार जोर से हरि बोल बोल के. हरी बोल हरी बोल हरी बोल. आज भूषण प्रभु डॉक्टर जो है हमारे सुरदूसरे प्रभु, उनका भी बर्थडे है, तो उन्होंने भी इस प्रसाद स्पॉन्सर किया है, तो उनको भी धन्यवाद देंगे, शुभेच्छा देंगे 3 बार हरी बोल बोल के. हरी बोल हरी बोल हरी बोल. आज शाम को जो है वो श्रीमान वृंदावन प्रभु पूना से जो आ रहे हैं, उनका स्पेशल सेमिनार की शुरुआत हो रही है, तुकाराम महाराज इनका जीवन, जो 4 दिन चलेगा आज शाम.